हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए, क्योंकि किसी भी पल अमित और अमन का युद्ध शुरू हो सकता था। उसके बाद ये बंगला बचेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि हमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए था। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, कहीं ना कहीं तारा परी को उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी और वो कहने लगी, ठीक है, तुम एक काम करो, धरा को उठाओ और गार्डन में चलो। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से जल्दी जल्दी बाहर निकल गईं। जैसे ही तारा परी बाहर निकलने लगी, उसे एक बार फिर वही एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। लेकिन तारा परी को दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी हद तक हैरान थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों उसे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई उसके आसपास है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि आज अमन को अपने दुश्मनों से सजा मिलने वाली थी। जैसे ही सोनल परी ने तारा को इस तरह से रुकते हुए देखा, वो कहने लगी, क्या हुआ तारा परी, तुम इस तरह से रुक क्यों गई हो, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। तब जैसे ही सोनल ने कहा, तारा ने एक नज़र और चारों तरफ देखा और फिर जल्दी ही वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही तारा परी बाहर निकली, एक छोटा सा काला बादल थोड़ी देर चमक कर गायब हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अमन भी अब जल्दी ही अपने असली रूप में आ चुका था और देखते ही देखते दोनों में एक भयानक युद्ध छिड़ चुका था। करिश्मा जी भी अमन का साथ देना चाहती थी, लेकिन अमन ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि वो अभी इस मामले में नहीं घुसेगी। वैसे भी ये बचपन से लेकर आज तक उसे धोखा देता हुआ आया है, तो आज इसे हर एक धोखे की कीमत चुकानी ही होगी। ये कहते हुए अमन ने जल्दी ही काली शक्तियों के मालिक अमित पर वार कर दिए थे, लेकिन काली शक्तियों का मालिक अमित इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसके पास असीमित काली शक्तियां थीं, जिसके बदौलत उसने कितनी ही बार अमन पर वार किए थे, जिससे अमन को काफी चोटें भी आई थीं। वहीं काला साया मल्लिका सिर्फ और सिर्फ इसी फिराक में थी कि कुछ ना कुछ करके अमन का ध्यान अमित पर से हटा ले। और करिश्मा और अमरेंद्र, जो कि अमित और अमन को देख रहे थे, तो क्यों ना वो इस बात का फायदा उठाकर तारा परी की जान ले ले, क्योंकि अगर वो तारा की जान ले लेती है तो उसे कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि भले ही उसने अमन को अपना नहीं बना पाया, लेकिन तारा की जान लेकर कम से कम उसे इस बात की तसल्ली तो होगी कि अगर अमन की जिंदगी में मल्लिका नहीं आ पाई तो कोई और भी नहीं रह पाएगा। तो ये सोचते हुए जल्दी ही उसने अपने आप को एक काले साए में तब्दील कर लिया था और तारा को ढूंढने के लिए बंगले में चली गई थी। लेकिन जैसे ही वो बंगले में गई, उसने पूरा बंगला खंगाल मारा था। तारा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी और जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि तारा इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि दूसरे छोर पर है, जिस जगह गार्डन में अमित और अमन का भयानक युद्ध हो रहा था उससे काफी ज्यादा दूरी पर तारा, सोनल और साथ ही साथ धरा को घेरे हुए थी, जो दूर से उन लोगों को देख रही थी। तारा परी का इरादा अमन के पास आने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी सबसे पहली प्राथमिकता धरा थी। वो धरा को सबसे पहले बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेजना चाहती थी। उसके बाद वो अमित यानी करिश्मा जी के पास आकर उनसे कोई ना कोई रास्ता निकलवाकर अमन की इस युद्ध में उसकी सहायता करना चाहती थी। इसलिए परी ने सोनल से जल्दी ही कहा था कि वो धरा को वहां से लेकर चली जाए। लेकिन इससे पहले कि सोनल धरा को वहां से लेकर जाती, अचानक से काला साया मल्लिका उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, इतनी भी क्या जल्दी है इंसानों, और तुम तारा मालकिन, तुम तो बॉस हो ना मेरी, मैडम तारा, बहुत हो गई तुम्हारी गुलामी, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, तुम एक मामूली इंसान और मैं काली शक्तियों की मालकिन मल्लिका हूँ, और मैं अब किस तरह से तुम्हारी जान लेती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। अब जैसे ही मल्लिका ने ये कहा, सोनल परी और तारा परी दोनों एक दूसरे को देखने लगी थीं और अगले ही पल मल्लिका पर जोरों से हंसने लगी थीं। अब जैसे ही मल्लिका ने तारा और सोनल को इस तरह से हंसते हुए देखा, तो उसे लगा कि जरूर अपनी मौत को सामने देखकर इन दोनों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ये इस तरह से हंस रही हैं। लेकिन तभी तारा परी हंसते हुए एकदम चुप हो गई थी और मल्लिका की ओर देखकर कहने लगी थी, अपनी औकात में रहो बदसूरत बुढ़िया, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ, तुम्हारे मालिक काली शक्तियों के मालिक अमित का तो आज अंत हो ही जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही अमित की जान जाएगी तो तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जान खुद बखुद चली जाएगी, क्योंकि तुमने भले ही अपने उस काले साए को अपने कंट्रोल में कर लिया हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी सांस सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों के मालिक अमित से ही चलती है, क्योंकि अमित ने ही उसमें जान फूंकी थी। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, मल्लिका के चेहरे पर काफी सारे सवाल आ गए थे और वो कहने लगी थी, ये क्या कह रही हो तुम, और तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? इस बात के बारे में तो आज तक अमित को भी नहीं पता है कि इस काले साए को मैंने अपने वश में कर लिया है, आखिरकार कौन हो तुम? तभी तारा ने मल्लिका की ओर देखते हुए कहा था, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा कि मैं कौन हूँ? मैं एक मामूली इंसान हूँ क्या? तुम भूल गई? अब जैसे ही तारा ने ये कहा, मल्लिका काफी हैरान परेशान हो गई थी और अगले ही पल उसने अचानक अपने हाथों के लंबे लंबे चाकू जितने नुकीले नाखून बाहर निकाल लिए थे और कहने लगी थी, अगर तुम एक मामूली इंसान हो तो आज मैं तुम्हारा अंत कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर अपने उस हाथ को वो तारा की गर्दन के पास ले आई थी और उसे वार करना चाहती थी, लेकिन तभी तारा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी आंखों से कुछ रंग बिरंगी रोशनी बाहर निकाली जो सीधा मल्लिका के हाथ पर जा लगी। और मल्लिका ने जो अपने जादू मंत्रों से अपने हाथ को एकदम चाकू के जितना नुकीला किया था, ठीक उसी वक्त उसका हाथ वहीं से जलने लगा था। अब जैसे ही मल्लिका ने ये देखा, वो पूरी तरह से हैरान हो गई और कहने लगी थी, तुम मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। बताओ कौन हो तुम? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई ना कोई शक्ति जरूर हो। तभी सोनल परी मल्लिका के ठीक पीछे आई थी और कहने लगी थी, तुम्हें तारा तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो मेरे साथ मुकाबला कर लो। अब जैसे ही सोनल ने इतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ये सारी बातें कही, अब तो मल्लिका की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो कहने लगी थी, ओह तो तुम इसी के साथ मिली हुई हो, ब्लडी वेडिंग प्लानर। तुम यहाँ वेडिंग प्लानर बनकर आई थी, बल्कि तुम यहाँ किसी न किसी प्लान के तहत आई थी। तभी अचानक सोनल परी ने अपना हाथ ऊपर किया था और कुछ जादू मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल्दी ही सोनल परी के हाथों में एक बड़ी सी तलवार आ गई जो कि पूरी तरह से चमचमा रही थी। अब सोनल परी के हाथों में इस तरह से अचानक जादू से तलवार देखकर अब तो मल्लिका की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं और वो समझ चुकी थी कि उसके सामने मामूली इंसान नहीं है। जिन लोगों को आज तक वो मामूली इंसान समझते हुए आई थी, असल में वो कितनी बड़ी जादूगर है इसके बारे में उसे किसी तरह का कोई अंदाजा नहीं था।
तभी अचानक सोनल परी ने उस तलवार को मल्लिका की गर्दन पर रखते हुए कहा था, तुम जानती हो ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये करिश्माई तलवार है। अगर इसे मैं तुम्हारी गर्दन पर यहीं और इसी वक्त काट दूं तो तुम्हारे अंदर का काला साया भी इससे कट जाएगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी? तुम्हें एक पल में मौत आ जाएगी। अब जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, मल्लिका जो कि उस वक्त तारा की जान लेने आई थी, अब तो उसे खुद की जान की फिक्र सताने लगी थी और अचानक से उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इस तरह से मेरी जान नहीं ले सकती हो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर मल्लिका तारा और सोनल दोनों के ही आगे गिड़गिड़ाने लगी थी और अभी वो गिड़गिड़ा ही रही थी कि तभी उन्हें अचानक से अमन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे ही तारा परी ने अमन की आवाज़ सुनी, वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी और सोनल की ओर देखकर कहने लगी थी, तुम इस काले साए को छोड़ दो, इसे मैं देख लूँगी। तुम जाओ और जाकर धरा को सही सलामत एक सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आओ, तब तक मैं अमन सर की मदद करने के लिए जाती हूँ। ऐसा कहकर तारा परी जल्दी ही मल्लिका की आंखों के ठीक सामने से गायब हो गई थी और मल्लिका जो कि अभी तक इसी उधेड़बुन में थी कि जरूर ये कोई ना कोई जादूगरनी है, उसका शक भी यकीन में बदल चुका था और वो चुपचाप एक बार फिर गार्डन की ओर जाने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि तारा की जान लेना उसके बस की बात नहीं है। वहीं जैसे ही तारा परी वहां गई, उसने देखा कि अमन के माथे से खून निकल रहा था। तारा ने जैसे ही ये देखा, वो जोरों से चीख पड़ी थी, अमन सर। और खून निकलते ही अमन का शरीर जो कि उसने काली शक्तियों के मालिक अमित के जितना ऊंचा था, वो अपने आप ही नीचे होने लगा था। तभी करिश्मा जी भी घबराए हुए अमन के पास गई थीं। अमरेंद्र जी, करिश्मा जी और तारा तीनों ही अमन के करीब खड़े हुए थे। अमन उन तीनों को बारी बारी से देख रहा था, उसकी आंखें बार बार खुल रही थीं, बार बार बंद हो रही थीं। तभी तारा ने करिश्मा जी की ओर देखते हुए कहा था, ये क्या हुआ मॉम, आखिरकार अमन सर को चोट कैसे लग सकती है? वो तो इस काली शक्ति से ज्यादा ताकतवर है, तो इस तरह से ये अमित अमन सर को चोट कैसे पहुँचा सकता है? तभी करिश्मा जी भी थोड़े से घबराई हुई आवाज़ में बोली थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, तू जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इस काली शक्तियों के मालिक अमित के पास हमने नहीं सोचा था कि इसके पास तिलिस्मी काला पत्थर होगा जिससे उसने अमन पर वार कर दिया। तिलिस्मी काला पत्थर? तारा हैरानी से करिश्मा जी की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, लेकिन करिश्मा मॉम, ये तिलिस्मी काला पत्थर क्या है? तब करिश्मा जी ने कहना शुरू कर दिया था, बेटी तिलिस्मी काला पत्थर काली शक्तियों के महागुरु का एक विशेष पत्थर है, उसकी शक्तियाँ उतनी ही हैं जितनी शक्तियाँ किसी तिलिस्मी सफ़ेद पत्थर में हैं। तारा परी पूरी तरह से हैरान थी और कहने लगी थी, लेकिन अब क्या होगा, और ये काली शक्तियों का मालिक तो वो तिलिस्मी पत्थर हासिल करना चाहता है। तभी करिश्मा जी ने कहना शुरू कर दिया था, हाँ वो तिलिस्मी पत्थर इसलिए हासिल करना चाहता है कि अगर तिलिस्मी काला पत्थर और तिलिस्मी सफ़ेद पत्थर एक हो जाते हैं तो जिसके पास होंगे उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसे कभी भी कोई भी हरा नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो उस पत्थर को चाहता है ताकि वो सफ़ेद जिन्नों पर और साथ ही साथ इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। अब जैसे ही तारापरी ने ये सुना वो पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसने देखा कि अमन ने अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और जल्दी ही उसका तिलिस्मी पत्थर उसकी आंखों के सामने था। फिर तिलिस्मी पत्थर देखते ही अमित की आंखों में भी चमक आ गई थी, क्योंकि उसने इस पत्थर को पाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया था और इतना लंबा चौड़ा इंतजार किया था। तभी अमन ने अपने मंत्रों का उच्चारण करने के बाद सफेद तिलिस्मी पत्थर को अपने माथे से छू लिया था, जिस जगह तिलिस्मी काले पत्थर से अमित ने उस पर वार किया था, और देखते ही देखते उसका घाव भर चुका था और एक बार फिर अमन लड़ने के लिए तैयार था। अब अमन ने सोच लिया था कि उसे अपनी जिन महाराज वाली शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि इस तरह से वो काली शक्ति के मालिक से हार किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता था। तो इसीलिए अमन ने जल्दी ही एक बार और अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अचानक से उस तिलिस्मी कड़े और तिलिस्मी पत्थर दोनों को एक करके काली शक्तियों के मालिक अमित पर एक जोरदार वार कर दिया था। अब जैसे ही उसने उस पर वार किया, देखते ही देखते अमित की चीख वहां गूंजने लगी थी, और केवल अमित के ही नहीं बल्कि काली शक्तियों की मालकिन मल्लिका की भी चीख वहां गूंजने लगी थी। क्योंकि अगर अमित के शरीर पर किसी तरह का कोई चोट लगती है या किसी तरह का कोई वार होता है तो उसका सीधा सीधा असर मल्लिका पर भी होने वाला था। और तभी अमित अपने सामान्य वेश में आ गया था और इंसानी रूप में आ गया था, और तभी उसने देखा कि अमित के पेट का काफी सारा आधा हिस्सा जल चुका था, और तभी तारा का ध्यान मल्लिका पर गया था। मल्लिका का भी पेट का आधा हिस्सा जल था। तारा परी काफी हैरान थी और वो समझ चुकी थी कि दोनों की जान एक ही है, अगर एक की जान जाती है तो दूसरे की जान ऑटोमेटिक चली जाएगी।